राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाइए गाइए हरे कृष्णा 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 हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय राधव कुंज बिहारी जय राधव धाव कुंज बिहारी गोपी जानवाला शिवर धारी गोपी जानवाला शिवर धारी हे राधम धाम कुंज बिहारी जय राधम धाम कुंज बिहारी सोदानंदन जय जनरंजन सोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर बनचारी जमुना तीर बनचारी जय राधव कुंज बिहारी जय राधव बिहार गोपी जानवाला शिवरधारी ग Gopi Jana Vala Bhai Vala Nai Goda Nandana Braja Jana Rana Goda Nandana Braja Jana Rana Jana Tira Anachai Radama Abha Vatihai Radama Abha Vatihai Gopi Jana Vala Bhai Vala Nai Gopi Jana Vala Bhai Vala Nai Goda Nandana Braja Jana Goda Nandana Braja Jana Rajana Jamna Tira Anachai Jamna Tira Anachai Jai Shri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Radha Shivashadi Gaur Bhaktavinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Radha Shivashadi Gaur Bhaktavrinda Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam, Sadhuskan, Eva Dhyaya, in Sukhama Sar. My handkerchief. Hare Krishna. Nasach Shastreshu Sajetam Nupajvetam Divikam Varam Vadam Vyajet Tarkam Paksham Kamcham Nam Misre.
Na nahi asat shastreshu samachar patra upanyas natak kalplik tatha jaisa sahitya सच्चे पढ़े या आसक्त हो ना ना तो उपजीवित रहने का प्रयास करे जीविकाम किसी व्यवसायिक साहित्य वृत्ति पारक वाद वादान दर्शन के विविध पक्षों पर व्यर्थ के तर्क वितर्क त्यजेत छोड़ दे तर्कान तर्कों वितर्कों को पक्षम पक्ष दल कंचा कोई ना नहीं संश्रयेत शरण ग्रहण करे अनुवाद समय का व्यर्थ अपव्यय कराने वाले अर्थात आध्यात्मिक लाभ से विहीन साहित्य का तिरस्कार करना चाहिए ना तो कोई अपनी जीविका अर्जित करने हेतु वृत्ति परक शिक्षक बने, न विवाद में भाग ले, न ही वह किसी कारण या पक्ष का आश्रय ले। तात्पर्य, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के इच्छुक व्यक्ति को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि वह साधारण साहित्य पढ़ने से बचे। यह संसार ऐसे सामान्य साहित्य से भरा पड़ा है जो अनावश्यक ही मन को विचलित करने वाला होता है। ऐसा साहित्य जिसमें समाचार पत्र, नाटक, उपन्यास तथा पत्रिकाएं सम्मिलित है, वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति हेतु नहीं, इसे तो कवों का किरा स्थल तद्वायसम तीर्थम कहा गया है। आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले को ऐसे साहित्य का तिरस्कार करना चाहिए, न ही मनुष्य को विभिन्न तार्किकों या दार्शनिकों के निष्कर्षों से संबंध रखना चाहिए। निसंदेह प्रचारकों को कभी कभी विपक्षियों के कथन पर तर्क वितर्क करने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु जहाँ तक संभव हो ऐसे वाद विवाद की मनोवृत्ति से बचना चाहिए। इसके संबंध में श्री मध्वाचार्य कहते हैं, न तो वृथा साहित्य का आश्रय ग्रहण करें, न उन तथा कथित अनेक दार्शनिकों तथा विचारकों से संबंध रखे जो आध्यात्मिक प्रगति हेतु व्यर्थ है, न ही फैशन या लोकप्रियता हेतु किसी को शिष्य बनाए। मनुष्य इन तथा कथित शास्त्रों के प्रति उदासीन बना रहे, न तो पक्ष ले, न विरोध करे, न ही शास्त्रों की व्याख्या हेतु धन लेकर अपनी जीविका चलाए। सन्यासी को सदा तटस्थ रहना चाहिए और श्री भगवान के चरण कमलों की पूर्ण शरण ग्रहण करके आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने हेतु साधनों की अन्वेषणा करनी चाहिए। अनुवाद पीछे बोलिए, समय का व्यर्थ अपव्यय करने वाले अर्थात आध्यात्मिक लाभ से विहीन साहित्य का तिरस्कार करना चाहिए। ना तो कोई अपनी जीविका करने हेतु अर्जित करने हेतु वित्तीय परक शिक्षक बने, ना वाद विवाद में भाग ले, ना ही वह किसी कारण या पक्ष का आश्रय ले।
ओम ज्ञातिमिरंदस्य ज्ञानंजनाशलाक्य चक्षुर्मिलितेन श्रीचैतन्य मनोविष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकधाम वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सगजदं सहगना रघुनाथं विरक्तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं श्रीराधा कृष्णपदं हे कृष्ण करुणा सिंधु सप्ता कांचन घोरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुधी देवी। जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण नाशक्षत्रेषु सजेतां नोपा जीवेद जीविकां वरं वरं त्याजतर्कात्मस्ते सोम नाद मुनि उपदेश दे रहे हैं और भगवत में आपको खुद गहरा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। व्यासदेव ने सारे शास्त्रों की रचना की थी, तभी भी उन्हें लग रहा था मेरे कार्य में कुछ कमी रह गई है। जब वो पहुँचे नारद मुनि के पास, नारद मुनि ने क्या कहा, उन्हें भक्ति पर बल नहीं दिया, जिसके पश्चात उन्होंने हमें श्रीमद् भगवत धर्म का ज्ञान है। तो भगवत के इस सात स्कंद में आप किसी कथा पढ़ते हो, राज महाराज, राज महाराज साधारण व्यक्ति नहीं है, स्वयं महाजन है, स्वयं भू लेना सुबह हमारा कबीर मनो अलग लोग जन को बेचो वही है ऐसे केवल। तो राज महाराज ने की चर्चा हो गई है और प्रहलाद महाराज को भगवान ने क्या कहा, मांगो मैं से जो वर्ष चाहिए मांगो, मेरे कारण तुम्हें इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और प्रहलाद ने क्या कहा, अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए जिसके द्वारा मेरा मेरे सारे भौतिक आकर्षण नष्ट हो जाए। क्या कहा, वर देना है ऐसा वर दीजिए मेरे में बिल्कुल भौतिक आकर्षण नहीं रहे। तो नारद मुनि आगे इस अध्याय में और पिछले अध्यायों में ज्ञान दे रहे हैं। मेरे शास्त्र के अनुसार चार वर्ण और चार आश्रम होते हैं, चतुर्वर्णमय सिस्टम में मांगना था। और ये जो चार आश्रम हैं उनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं वो ज्ञान भी आपको प्राप्त होता। तो जैसे संन्यास आश्रम में व्यक्ति को 24 घंटे पूरे रहना चाहिए अध्यापक कार्य में, तो यहाँ नारद मुनि शिक्षा दे रहे हैं कि सन्यासी का क्या उद्देश्य, दूसरे आश्रमों में क्या उद्देश्य। तो यहाँ इस लोगों में उनकी चर्चा की जा रही है क्योंकि 100% समर्पित होना चाहते हैं वहाँ की सेवा में। वो पीछे सुनाई दे रहा है, हाँ नहीं आगे सुनाई दे रहा है, ठीक है। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है, श्लोक में कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति की इच्छा है वो तो भगवान के चरण कमलों में समर्पण करने की। हरे कृष्ण। तो ऐसे व्यक्ति को वो साहित्य नहीं पढ़ना चाहिए इसमें परम भगवान के विषय में विज्ञान बहुत स्पष्ट कह रहे हैं। जो अध्यात्म वाली व्यक्ति है वो तो सन्यासी जैसा है जिसके मन में, चाहे वो किसी आश्रम में भी हो, उसके मन में भगवान के शरणागत होने की इच्छा है, तो उसे वो साहित्य नहीं पढ़ना चाहिए जो कि व्यर्थ, क्षमा एव ही केवलम, वो साहित्य नहीं पढ़ना चाहिए जिसका वहाँ से कोई संबंध नहीं है। और दूसरे शब्द में ये उपदेश दिया जा रहा है कि अगर हम वो शास्त्र में रुचि लें जिनका भगवान से कोई संबंध नहीं, सो दैट इज सिंपली कंसिडर्ड ये शब्द है क्षमा एव ही केवलम। तो इस विषय की चर्चा अब कई स्थानों में पढ़ते हो, उदाहरण के लिए प्रथम स्कंद में भगवतम के यही ज्ञान यही कहा जाता है, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल करना चाहिए। तो समाज में भौतिक विषयों की किताबों में कोई कमी नहीं है, किसी बुक स्टोर में जाओ क्या देखोगे, देखोगे 99.9% क्या है टॉपिक, जेल टॉपिक है कि नहीं, 99% जो किताबें आपको मिलती हैं वे साहित्य है। ये साहित्य किस विषय का है, किस विषय का, भौतिक विषय का। तो नारद मुनि क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति भगवान के शरणागत होना चाहता है, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में जुड़े रहना चाहता है, उसको वो साहित्य नहीं पढ़ना चाहिए जिसमें भगवान का गुणगान नहीं हो। व्यक्ति को वही साहित्य पढ़ना चाहिए जिसमें क्या है, भगवान का गुणगान। दादा मुनि स्पष्ट कह रहे कि हमें वो साहित्य में रुचि नहीं लेनी चाहिए जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं हो। प्रभा जी ने फर्स्ट कैंटो में अनेक स्थानों में इसी विषय की चर्चा की है, क्या वी शुड नॉट रीड मंडेन लिटरेचर, वी शुड रीड व्हाट लिटरेचर। प्रभा जी हमारे आचार्यों ने प्रचार के कार्य पर बड़ा बल दिया है, और बाकी सिद्धांत जी पहले महान आचार्य थे जिन्होंने वैदिक साहित्य को बांटा सारे विश्व में, और ठाकुर भक्तिनाथ जी के प्रकट होने से पहले ये प्रिंटिंग इंडस्ट्री थी नहीं, ये सुविधा नहीं थी समाज में कि आप किताबों को छाप सकते हो और दूसरे स्थानों में पहुँचा सकते हो। तो ये सब शुरू हुआ कब, ठाकुर भक्तिनाथ जी जब पृथ्वी पर थे अंधारा उस समय, भक्तिनाथ ठाकुर ने क्या किया, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था किसके ऊपर, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। उन्होंने इस ग्रंथ को भेजा विश्व के अनेक विशेष महाविद्यालयों में। तो जो वैष्णव भक्त हैं वो भौतिक ज्ञान में खुशी नहीं रहते जिसका जिसमें कोई आध्यात्मिक संदेश नहीं है। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि जो समर्पण करना चाहता है भगवान को या भगवान की सेवा में जुड़ना चाहता है, इज नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग क्या मंडेन लिटरेचर। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है, और इसलिए प्रभुपाद ने भी भक्तों को क्या आदेश दिया, क्या कहते हैं, लव मी देन पापा ने कहा तुम्हारा प्रेम स्नेह है मेरे लिए, क्या करो इन गंधों को मारो। तो आगे लिखा है इस श्लोक में, व्यक्ति को प्रोफेशनल प्रचारक नहीं बनना चाहिए, हमें प्रचार के कार्य में नहीं जुड़ना चाहिए इस भावना के साथ, उसमें धन कमाएंगे। जैसे कि भारत में भी आप देखते हो बहुत से कथाकार है जो क्या करते हैं, कथा करते हैं। तो कथा करते हैं किस लिए धन कमाने के लिए। यहाँ इस श्लोक में नारद मुनि कह रहे हैं कि व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पैसे कमाऊँगा इन कथाओं के द्वारा, बल्कि उसमें से नहीं करना चाहिए। और व्यक्ति को अपनी लाइवलीहुड इस ग्रंथों के द्वारा नहीं करना चाहिए। आगे लिखा है, और व्यक्ति को शुद्ध भक्ति के अलावा और किसी विषय में कुछ नहीं रहनी चाहिए। इसी बात भगवत में आप देखते हो ये संदेश कि हमें भौतिक कार्यों से जुदा होना चाहिए और वो साहित्य पढ़ना चाहिए जिसमें भगवान का ज्ञान हो। अब देखते थे इस विषय की चर्चा इस स्थान में की गई है। प्रथम स्कंद में दो प्रसिद्ध श्लोक हैं जिनमें ये शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं वो साहित्य जिसमें भगवान के विषय में कोई ज्ञान ना हो वो क्या है, केवल श्रम ए वही केवल। तो भगवत में हमें सबसे उत्तम ज्ञान मिल रहा है। गुप्तात्म में प्रभु जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को भौतिक साहित्य से दूर रहना चाहिए, और प्रभु जी आगे कहते हैं अनेक पत्रिकाएं इत्यादि, उसका कोई लाभ नहीं। तो हमें आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन करोगे तो क्या लाभ होगा, क्या लाभ? अब ज्ञान बढ़ेगा, आध्यात्मिक ज्ञान। दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, भौतिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान के द्वारा आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, पर आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, जिसके द्वारा आपको शिक्षा मिलती है जीवन के लक्ष्य के विषय। यहाँ कहा जा रहा है पत्र में, जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है उसे इस भौतिक साहित्य में रुचि नहीं लेनी चाहिए। और पूरी विश्व जो है भरा हुआ है किसके साथ, भौतिक साहित्य के साथ। आप जैसे रशिया में बहुत से बुक स्टोर हैं, और जो बुक स्टोर हैं ये भरे हुए हैं किसके साथ, भौतिक साहित्य के साहित्य के। इससे कुछ लाभ होता है ये होता। तो श्रीमद् भागवतम में इस श्लोक में ये स्थापित किया जा रहा है कि वो साहित्य जिसमें भगवान के विषय में ज्ञान ना हो वो साहित्य में हमें रुचि नहीं लेनी चाहिए। वो जो साहित्य है उसमें रुचि नहीं लेनी चाहिए, क्यों? क्योंकि उसमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। और वो साहित्य जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान है, चाहे वो जो साहित्य है उनकी छपाई में कमी भी हो, जैसे प्रभुपाद जी ने प्रथम स्कंध छापा था वो भारत में थे, प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों का वितरण कर रहे थे, तो एक समय वो एक दिन वो एक लाइब्रेरी में पहुँचे, तो लाइब्रेरी ने प्रभुपाद से कहा, स्वामी जी अब इतना कष्ट उठाते हो इन किताबों को प्रकाशित करने में, पर किताब वो ज्यादा देर नहीं रखेंगे, पढ़ेंगे फेंक देंगे, पर अगर आप ग्रंथ के रूप में इन्हें प्रकाशित करोगे तो पढ़ेंगे और भविष्य के लिए भी रखेंगे। तो इसे प्रभा जी ने सोचा कि यह भगवान का लक्षण संदेश, उसके पश्चात प्रभा जी ने किताबों का प्रकाशन आरम्भ किया। सबसे पहले उन्होंने श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद का प्रकाशन किया, और प्रभा जी उसमें कहते हैं कि अगर हमें से कितने भक्तों ने फर्स्ट कैंटो देखा है, तो प्रभा जी ने छापा था विदेश जाने से पहले, तो वो जो ग्रंथ थे प्रभा जी ने छापे थे उनकी क्वालिटी ज़्यादा ऊंची नहीं थी, वो प्रभा ने छापे थे लेटर प्रेस पर। लेटर प्रेस आप समझते हैं, आजकल तो ये ऑटोमेटिक मशीनें आ गई है, पर लेटर प्रेस में अच्छा क्वालिटी नहीं आता। और प्रभा जी लगभग सारा कार्य खुद कर रहे थे, वृंदावन में निवास कर रहे थे वो ग्रंथों का अनुवाद, फिर जाते थे दिल्ली में थर्ड क्लास डब्बे में, उन दिनों में थर्ड क्लास भी था, और फिर प्रभु जी दिल्ली पहुँच कर जाते थे प्रिंटिंग प्रेस में, जहाँ वो खुद बैठ कर सुपरवाइज करते थे प्रिंटिंग वगैरह। तो उस ग्रंथ में संदेश तो था पर अनेक कमियाँ थी, स्पेलिंग मिस्टेक्स, प्रिंटिंग मिस्टेक। प्रभा जी ने कहा कि हालांकि हमारे ये इस कार्य में कई कमियाँ रह गई हैं, क्योंकि ये संदेश परम भगवान का है, भगवान की वाणी है, इसको परफेक्ट माना जाए। दूसरे शब्दों में ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर इवन इज प्रिंटेड विद शॉर्ट कमिंग इज प्योर। और जैसे प्रभा जी भारत में थे तो कई बार लोग जाकर प्रभा से कहते थे आपके शिष्यों को संस्कृत श्लोकों का उच्चारण करना नहीं आता। तो प्रभा जी ने कहा इट डजंट मैटर लिख दिया प्योर भक्ति। तो वो साहित्य जिसमें धर्म ज्ञान की चर्चा नहीं हो वो साहित्य क्या है, उसे हमें क्या करना चाहिए, विजय कर देना। वही रुचि होनी चाहिए बहुत एक वो रुचि होनी चाहिए उस ज्ञान में जिसमें परम भगवान का गुणगान हो। तो यहाँ प्रभा जी से तात्पर्य में कह रहे हैं कि तो बुद्धिमान व्यक्ति है वो साहित्य में रुचि रहता है जिसमें परम भगवान का गुणगान हो। तो प्रभा जी का पूरा तात्पर्य लगभग इस विषय पर है। तो हमें अध्यात्मिक ज्ञान परिपूर्ण करना है, अध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन करना है। तो आप ये भी देखते हो ये जो अनेक अखबार मैगजीन पेपर वो किताबें आप देखते हो जिनमें भगवान के विषय में कोई ज्ञान नहीं है उस साहित्य को प्रकाशित करने के लिए आपको कुछ अंदाजा नहीं कितने पेड़ों को मारा जाता है। ये जो अखबार कागज जिसमें आप किताबों को छापते हो ये कागज कैसे बनता है इसको पता है? हाँ पल्प, और पल्प जब कैसे बनता है पेड़ों को काट के, पेड़ों को भी आत्मा है, पेड़ों को भी जान है। तो पेड़ों को काटना पड़ता है उसे पल्प बनता है, वो पल्प से आगे जाकर कागज बनता है। तो कभी कभी भाग कहते हैं तुम्हारी किताबों की कीमत बहुत बढ़ते जा रही है, जैसे इस समय कागज का भाव बाजार में बहुत बढ़ गया है। आप मुझे मैंने तो एक गुथा गीता ही ऐसा रहा है कि शायद 5-10 रुपये महंगी हो। क्यों क्यों? ये जो पल्प हम लेते हैं बाजार में वो बहुत महंगा हो गया। वो महंगा क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उस युद्ध में जो पल्प वो सबसे ज़्यादा पेड़ हैं उन पेड़ों को काट कर कागज बना देते हैं। पर अब सारे जंगल सारे पेड़ नष्ट हो गए हैं इस युद्ध में। अब क्या कमी है? कागज की कमी। तो प्रभा जी ने तात्पर्य में कहा है कि हमें इन ग्रंथों के द्वारा परम भगवान का गुणगान करना है। हमें बहुत एक विषयों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो जो सन्यासी है उसकी हमेशा ये इच्छा रहती है कि भक्ति संबंधित किताबों को पढ़े। तो इसका संसार में वह एक और सौभाग्य ये है कि आपके पास अनेक ग्रंथ हैं। प्रभा जी ने लगभग 80 ग्रंथों का अनुवाद किया अंग्रेजी भाषा में और आज ये जो ग्रंथ हैं ये प्रकाशित हो गए हैं लगभग विश्व की हर प्रसिद्ध बात है। आज 70 से अधिक भाषाएँ हैं जिनमें आप इन ग्रंथों को प्राप्त कर सकते। तो कई बार हम ये भी सोचते हैं कौन पढ़ेगा इन ग्रंथों को, उनकी रुचि नहीं, पर उनकी रुचि है आपके उत्साह और पवित्र प्रयास पर निर्भर है। और जैसे कई बार भाव मन में ये बैम रहता है, nobody wants to read these books, कोई किताबों को पढ़ना नहीं चाहता, हम जबरदस्ती बांट रहे हैं, नहीं तो इन ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं, और ग्रंथों को पढ़ने से क्या लाभ होगा, आपका समय आप भगवान के शरणागत हो सकेंगे। तो यहाँ नारद मुनि कह रहे हैं कि वो साहित्य जिसमें भगवान के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, क्या है वो, बेकार कर रहे थे, उसका कुछ वैल्यू नहीं, और वो साहित्य से आप जीवन के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। तो जो भक्त है तो क्या भाव रहता है कि हम अध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करें, और राम मान ने क्या कहा, 5 साल की आयु से मैं ज्ञान को अध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करना आरम्भ कर दिया था। तो श्रीमद् भगवत में हमें हर प्रश्न का उत्तर मिलता है, हर समस्या का हल, और हर प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ हम ये कहा जा रहा है जो भगवान को चरणों में समर्पण करना चाहे उससे वो ही ऐसे पढ़ना चाहे जिसमें परम भगवान का गुणगान हो। तो हमें इन ग्रंथों को बांटना नहीं पर पढ़ना भी है। तो वो जी कहते थे कि आप पढ़ोगे नहीं तो कोई आपसे पूछेगा क्या है अंदर संदेह, आप आई डोंट नो, ठीक नहीं देखेगा। तो इसके लिए अब इस्कॉन संस्था में इतने साल हम लोग ने पूरा दम लगाया ग्रंथों को बांटने में, पर अब प्रयास किया जा रहा है क्या कि हम इन ग्रंथों को पढ़ें भी। ग्रंथों को पढ़ना बहुत आवश्यक है, खास करके वो ग्रंथ जिनमें परम भगवान का गुणगान हो। अगर हम वो साहित्य पढ़ेंगे तो उसके द्वारा क्या होगा, धार्मिक जागृति होगी। कई बार भक्त पूछते हैं आपकी गीता को गीता यथा रूप क्यों क्यों कहा जाता है, आपसे पूछा कि सारे विश्व में लोग पूछते आपकी गीता को यथा रूप क्यों कहते हैं। प्रभा जी समझाते हैं भूमिका में, प्रभा जी कहते हैं क्योंकि कईयों ने गीता प्रकाशित किया है पर अपने भाव अर्थ को भाव को जोड़ दिया, और एज इट इज है क्यों, क्योंकि प्रभा जी ने जो असली संदेश है वो नहीं बदला। प्रभा जी ने कभी भी प्रचार में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ऐसे जब प्रभा जी अमेरिका पहुंचे थे तो कईयों ने उन्हें कहा स्वामी जी आप जो संदेश दे रहे हो उसे कोई नहीं स्वीकार करेगा, आप जो संदेश दे रहे हो इसको कोई नहीं स्वीकार करेगा, आप हमारे जैसे पैंट शर्ट सूट पहनना शुरू करो। प्रभा जी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जब प्रभा जी ने पहला केंद्र खोला था तो उनके शिष्यों से चर्चा की जा रही थी, अब हम जो सोसाइटी को भी रजिस्टर करेंगे क्या नाम देना चाहिए, तो कई उन्होंने कहा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर प्रॉपर रिजेक्टेड दैट, ही सेड वी हैव टू बी स्पेसिफिक, उन्होंने नाम दिया राष्ट्र श्री कृष्ण भवन में। प्रभा जी ने हमें हमेशा सच्चा ज्ञान दिया। तो आध्यात्मिक भौतिक समाज में किस चीज़ की कमी है, भक्ति सिद्धांत जी कहते थे अगर भौतिक समाज में किसी चीज़ की कमी है तो क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। विदेशों में जो संडे का अखबार का एडिशन आता है उसमें 200 पेज होते हैं, 150 से 200, और भगवान के विषय में एक शब्द भी नहीं होता। जैसे कि भारत में भी अखबार छपते हैं इतने पेज सर, अगर आप इनको पढ़ो वो अखबार को आप क्या देखोगे, वहाँ के विषय में बहुत कम ज्ञान है। ये है हमारा दुर्भाग्य, तो समाज में अगर किसी चीज़ की कमी है तो दिव्य ज्ञान की कमी है। और अब हम इस्कॉन में प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो इस्कॉन के भक्त हैं इन ग्रंथों को पढ़ें, आपको रोज पढ़ना चाहिए और आप देख भी सकते हो क्या पढ़ा आज पढ़ा क्या करता पढ़ा, क्योंकि इतनी देर तो हम व्यस्त थे बांटने में, ग्रंथों को बांटना भी है और पढ़ना भी है, और उसके द्वारा हमें ज्यादा ज्ञान बनेगा। नाम तो भक्ति में क्या है पढ़ते अब शब नाम कैसे विश्व स्वर्ण पारस है ना अच्छा सत्य श्रवणम और कीर्तनम का क्या अर्थ है, श्रवणम कीर्तनम क्या अर्थ है, क्या अर्थ है पिछानन करना और सुनना। भगवान ने हमें एक जीव दिया, ये जीव का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। जीव द्वारा आप क्या करते हो, क्या करते हैं हम जीव के द्वारा, भगवान के नामों का जान और कृष्ण कथा की चर्चा, कृष्ण कथा भी धर्म ज्ञान कीर्तन विष्णु स्मरण। और अगर आप पढ़ोगे तो फिर संभव होगा भगवान का स्मरण भी कर पाओ। तो हमें नियमित रूप से ये आदत डालनी चाहिए, हम रोज पढ़ेंगे श्रीमद भगवत। आप ऐसे कितने भक्त हो रोज पढ़ते हो भगवतम या गीता को, कितने भक्त रोज पढ़ते हैं कम से कम गीता या भगवतम या कोई भी ग्रंथ, ये तो बहुत कम संख्या है। हम सब का प्रयास करना होना चाहिए, जैसे हम सोलह माह करने की जिम्मेदारी उठाते हैं, सोलह माह करें जिम्मेदारी उठाते हैं, हमें नियमित रूप से रोज पढ़ना चाहिए। उसी प्रकार हमें शास्त्रों का भी अध्ययन रोज करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने शुरू से ये स्थापित किया कि हर व्यक्ति जो मंदिर में रहता है उसे क्या करना चाहिए, भगवद गीता भगवतम की क्लास का अध्ययन करना चाहिए, रोज बैठना चाहिए। और क्यों, अब प्रमाणिक कथा को सुनोगे अपने ध्यान में ज्ञान पड़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन ग्रंथों को पढ़ें, केवल सजाने के लिए नहीं रखें, सजाने के लिए रखें वो भी ठीक है, ज़्यादा बेहतर है अगर आप इन्हों पढ़ो। और वी मस्ट गेट दिस रीडिंग हैबिट, हमें ये आदत डालनी चाहिए क्या कि हम रोज ग्रंथों को पढ़ें, और कोई ग्रंथ पढ़ोगे क्या लाभ होगा, उनकी बुद्धि तेज हो जाएगी, तेज बुद्धि के साथ सरलता के साथ आप भौतिक आकर्षण का वध कर सकते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में प्रभु जी ये कह रहे हैं, प्रभु जी ने इसमें आत्माचार्य के दो प्रसिद्ध श्लोकों का वर्णन किया है। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि इन ग्रंथों में क्या होना चाहिए, प्रमाणिक आधार में क्या, तो ये बहुत आवश्यक है। तो प्रयास करेंगे तो रुचि भी बढ़ेगी। एक बार भक्त प्रश्न पूछते हैं ना, मैं रुचि कैसे बढ़ाएं, जो श्रद्धावान भक्त हैं वो चाहते हैं क्या है ना, मैं रुचि बढ़े और शास्त्र के अध्ययन में रुचि बढ़े, पर रुचि अगर बढ़ाना है तो प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास के करे बिना संभव नहीं है। जैसे कि आपको अच्छे कॉलेज में दाखिला चाहिए IIT में, वो प्रयास करना पड़ रहा है, उसी प्रकार हरिनाम में रुचि बढ़ेगी अगर आप हरिनाम का उच्चारण करोगे, शास्त्रों के अध्ययन में रुचि बढ़ेगी अगर आप उनका अध्ययन कर रहे हो, अगर आप अध्ययन कर रहे ही नहीं हो तो तो आपकी रुचि नहीं बढ़ेगी। ये भाई पूछना चाहते हैं, विनम्रता का भाव कैसे बढ़ेगा? हाउ कैन आई बिकम मोर हम्बल? क्या है उपाय, कैसे बढ़ेगा? हाउ कैन यू बिकम मोर हम्बल? फॉलो लॉर्ड चैतन्यस थर्ड श्लोक फिनाने पे से नीचे ना आप अगर चाहते हो कि सदा कीर्तन करो तो क्या बहुत एक समाज में सुख दुख आदर अपमान इसका सबको महसूस करना पड़ता है, हमें क्या करना चाहिए? इसमें वही ठोर तो शास्त्रों का ध्यान बहुत ही हो सके। अगर आप देखते हो भक्तों की संख्या बढ़ रही है, उसका मूल कारण ये है इन ग्रंथों का वितरण। वो ग्रंथों का वितरण आप करते हो तो कई लोग इसको पढ़ कर आकर्षित हो जाते हैं। कई लोग जब इन ग्रंथों को पढ़ते हैं, हम ये सोचते हैं कोई इन ग्रंथों को नहीं पढ़ता, क्योंकि भूल है या अपराध है। जब आप पढ़ोगे तो उसका असर पड़ेगा। कैनेडा में एक भक्त थे जो नेवी में थे, वो हॉकी खेल रहे थे, उनका पाँव टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। तो वो दफ्तर जा नहीं सके, तो रोज जाते थे लाइब्रेरी में किताबों को पढ़ने के लिए, क्योंकि सारा दिन फ्री थे। तो एक दिन उनके हाथ में आई फ्रेंच भाषा में भगवद गीता, उन्होंने फ्रेंच भाषा की भगवद गीता अध्ययन शुरू किया। और वो लाइब्रेरी थी, तो लाइब्रेरी का कानून ये था हम घर नहीं जा सकते, वहीं पढ़ो। तो वो इतने उत्साहित हो गए गीता पढ़कर, उन्होंने गीता को छुपा कर लाइब्रेरी से बाहर ले गया। ये रोज उन्हें आना पड़ता था पढ़ने के। तो ऐसे थोड़ा समय बीत गया और फिर उन्हें पता लगा कि इस्कॉन का मंदिर है ऑटोवा में, उन्होंने खरीद कर कई किताबों को लाइब्रेरी में डाल दिया। तो जैसे हम अब पढ़ते हो सुनते हो, कोई किसी व्यक्ति ने पढ़ा जीवन सुनते, और पंजाब में एक व्यक्ति था है जिसका बिजनेस है ट्रंक को रिपेयर करना। ट्रंक समझते हो, सूटकेस ट्रंक आजकल। तो कोई उन्हें देने आया, दे किसी ने एक ट्रंक दिया था रिपेयर करने के। वो ट्रंक को देने से पहले उसका मालिक था, उसने देखा था साफ अंदर कुछ किताब कुछ रह तो नहीं गया, उसे दो छोटी किताबें रह गई थी और उसने देखा है। जब ये व्यक्ति रिपेयर करता था, जब उसने एक ट्रंक खोला रिपेयर करने का, उसने दो छोटी किताबें मिल गई। उसका कोई परिचय नहीं था इसको था, मुझे पता भी नहीं इसको क्या। खैर उसने वो किताबों को पढ़ना शुरू किया, तो पढ़ने से क्या परिवर्तन हुआ, उसका भक्ति में रुचि बढ़ गई और वो भगवान के शरण हो गया। तो साहित्य आध्यात्मिक साहित्य में बहुत बड़ा भागवत में कहा गया है न सपरे ईश्वर प्रदेश नित्य भगवत से हुए भगवती उत्तम श्लोक है भगवती नहीं। अगर हम इसी में भगवत पढ़ेंगे तो कह रहे तो क्या क्या होगा, कहते कि मैंने कहे। तो हमें आध्यात्मिक संदेश में रुचि लेनी चाहिए और आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम चाहते हैं भक्ति का बीज उगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तो मंद प्रमित कुलम भगवान जी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति जैसे इसे क्या मिलता है? भक्ति का ज्ञान। भक्ति का ज्ञान तो मिल गया आपको, पर ये भक्ति का बीज उगेगा कैसे, कैसे उगता है? हाँ, क्या करना पड़ता है? शरण कृष्ण का ये नहीं केवल कि श्रीनाम का संतों का पढ़ना, वो भी शरण कृष्ण में गिना जाता है। तो भक्ति का बीज उगेगा कैसे, जब आप क्या करोगे? और महाप्रभु ने आगे क्या कहा, हमें अपने आप को बचाना चाहिए। कैसे? कैसे? भक्तों के संग में रहकर, भक्तों के संग में रहना ये बहुत आवश्यक है। भक्तों के संग में रहना, जीसस कर्म में विभूति ने अपने बेटे के भीले देव से पूछा था, ये बताओ किस प्रकार मुझे बौद्धिक आकर्षण से छुटकारा मिल सकता है। और बेटे देव ने माँ को ज्ञान दिया, उन्होंने क्या कहा, भक्ति योग के माध्यम से। और ये भक्ति योग प्राप्त कैसे होता है? तो कबीर देव भगवान ने कहा, ये भक्ति योग प्राप्त होता है आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है कैसे? साधु संघ में रहेगा। और उन्होंने ये कहा कि हमें किससे बचना है, किससे बचना चाहिए? भक्ति के बगीचे को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को साधु संघ में रखना चाहिए। साधु संघ में रखोगे तो क्या साधु संग, साधु संग है साधु संग। तो आपके इस श्लोक में आपको ये महत्वपूर्ण संदेश मिल रहा है कि हमें ये जो क्या पढ़ना चाहिए, आध्यात्मिक साहित्य। आध्यात्मिक साहित्य में टूटी भी हो, कमी भी हो, पर उसका अर्थ संदेश स्पष्ट हो, भगवान की शिक्षा के बराबर हमें इस ग्रंथ का लाभ उठाना चाहिए। तो नारद मुनि इन श्लोकों में शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार हमें भगवान की शरणागत होना है। और खास करके संन्यास आश्रम में हैं, उनको जो संन्यास आश्रम है उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें भौतिक संगत से बचना चाहिए। वो साहित्य नहीं पढ़ना चाहिए जिसमें भगवान का गुणगान नहीं हो, वही साहित्य पढ़ना चाहिए जिसमें क्या है, भगवान का ज्ञान हो। और वो साहित्य पढ़ेंगे क्या लाभ होगा, कि इस साहित्य के द्वारा उनका भौतिक आकर्षण घटेगा, ये आवश्यक है। और हमें क्या करना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो ये होना चाहिए हमारा अलग। एक समय चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों से कहा, अब मैं केवल नगपतियों के घर में खाऊंगा। तो उनके जो शिष्य थे घबरा गए, ये बुझा रहे थे ये खाना से। उनके भक्तों ने कहा कि आप केवल लखपतियों के घर में खाओगे, हम तो लखपति नहीं हैं, मतलब आप हमारे घर नहीं आओगे। महाप्रभु ने कहा लखपति का मतलब है जो लाख बार जाप करता है, वो है। तो असली संपत्ति क्या है, ध्यान में ज्ञान। और ध्यान में ग्रंथ संदेह ये ऐसी संदेह, तो हमें इसमें रुचि लेनी चाहिए। और आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा तो सरलता से हम माया का वध कर सकते। तो इस अध्याय में नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार हम उसका व्यवहार होना चाहिए जो कि संन्यास आश्रम में, संन्यास आश्रम में है, उनका तन मन धन से क्या होना चाहिए, कार्य में जुड़े रहना चाहिए। ये है भगवान का संदेश। हरे कृष्ण। डिप्रेशन है? यस यस। यहाँ प्रसाद के लिए आएंगे तो क्विक 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 प्रसाद यहाँ भक्त आएंगे। नो क्वेश्चंस। जल्दी जल्दी भाई। हरे कृष्ण।